AFEIS.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं अभिजीत नामदेव पाटिल सांगली महाराष्ट्र से, रणवीर कुमार सिंह दिल्ली से, कृष्ण कुमार सिंह मथुरा से, आदित्य जैन इलाहाबाद से, पंकज मिश्रा बक्सर से, विपिन कुमार यादव उन्नाव उत्तर प्रदेश से, हरीश्वर शर्मा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से, सौरभ यादव फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से और सोनू भिवानी हरियाणा से। तो अभिजीत, रणवीर, कृष्णा, आदित्य, पंकज, विपिन, हरीश्वर, सौरभ और सोनू, आप सभी का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं ये जो स्वागत की बात कहता हूँ, सच मानिए तो ये स्वागत केवल शब्दों के ही स्वागत नहीं होते, इनमें मेरी भावना, मेरे विचार दोनों बहुत अच्छी तरह से, आप कह लीजिए बहुत गहराई के साथ घुले मिले होते हैं। और इसीलिए मुझे यह विश्वास भी होता है कि आप लोगों का जो अपना उत्साह है वो निश्चित रूप से मेरे उत्साह को, हमारी पूरी टीम के उत्साह को और अधिक बढ़ाकर डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा कर सकेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जो लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज है। फ्रेंड्स, कल हम लोग एक थोड़े से अलग से विषय पर बात कर रहे थे और आपको ध्यान होगा कि वह विषय था मार्क जकरबर्ग से जुड़ा हुआ, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी जो उनके दफ्तर में जब गए तो उन्होंने अपना एक संस्मरण, एक छोटा सा संस्मरण शेयर किया और उसका क्रक्स ये था, उसका सार ये था कि जब वो स्टीव जॉब्स के पास गए अपनी परेशानी का हल पूछने, तो उन्होंने कहा कि तुम जब भारत जाओगे तो वहां मंदिर जरूर जाना। और उन्होंने कहा कि मैं भारत गया और वहां मुझे रास्ता मिला और इसीलिए आज मैं यहां तक पहुंच गया। मित्रों, इसी को लेकर के कल मैंने उसकी थोड़ी सी अलग तरीके से व्याख्या की थी कि क्या कारण है कि जो जकरबर्ग है वो एक बार आने से और केवल मंदिर जाने से उसे जीवन का इतना बड़ा मार्ग मिल गया। और हम सब जिन्होंने अपने घर में भी मंदिर बना रखे हैं या रोज रोज मंदिर जाते हैं, हमें उतना मार्ग, उस तरीके का मार्ग, वैसा मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। मित्रों, इसी संदर्भ में कल मैंने आपसे थोड़ी सी बातें की थी और मैंने आपको बताया था, जो मेरी समझ है सच पूछिए तो वो ये कि इनफैक्ट जो रियल ताकत होती है मित्रों, जिसके लिए मैं शुरू से आप लोगों को प्रेरित करता रहा हूं, बताता रहता हूं, वो ये, वो हम में होती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हमारे चारों तरफ जो शक्तियां घूम रही हैं, जिसे आप एनर्जी कह सकते हैं, हमारा अपना चैनल कितना परफेक्ट है जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। मित्रों, अगर हम सीधे सीधे जकरबर्ग के बारे में ही बात करें तो देखिए, जकरबर्ग की जो सबसे बड़ी सफलता है वह सफलता इनोवेशन की सफलता है। उसने एक नई चीज ढूंढी, नई चीज खोजी, और वह भी ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी उम्र में या बहुत बड़े इन्वेंशन के बाद, बड़ी मेहनत के बाद। एक सामान्य तौर पर जब वो स्टूडेंट थे उसी समय कुछ साथियों ने मिलकर के ये कमाल कर दिखाया। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो सारी सफलता है जो जकरबर्ग की, वो इनोवेशन में है, आविष्कार में है, कुछ नया रचने और गढ़ने में है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि क्या सच में हम जो घटना उन्होंने अपने बारे में बताई है भारत को लेकर के, क्या उसमें इनोवेशन के कुछ बीज होते हैं? है ना, हम प्रेरणा से हटकर आगे की बातें कर रहे हैं। प्रेरणा तो होती ही है, जो आप कहीं से भी ले सकते हैं। एक जानवर को देखकर प्रेरणा ले सकते हैं, किसी एक छोटी सी घटना को देखकर प्रेरणा ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में छोटी सी घटना को पढ़कर आप प्रेरणा ले सकते हैं। प्रेरणा तो कहीं से भी ली जा सकती है मित्रों, लेकिन जो इनोवेशन होता है वो उसके थोड़े से आगे की बात होती है। उसके लिए शायद चेतना के स्तर पर हमें और अधिक गहराई में उतरने की जरूरत पड़ती है। मित्रों, इस पर अगर हम सीधे सीधे प्रकृति के सिद्धांत को लागू करें तो देखिए, सीधी सी बात है कि चीजें आएंगी कहां, जहां उसे जगह मिलेगी। तो जगह तो होनी चाहिए, हमारे अंदर कोई ना कोई जगह तो होनी चाहिए। इस तरह के जो इनोवेशंस के विचार आते हैं, ये इनोवेशंस के विचार बहुत ही एक लिबरल माइंड में आते हैं दोस्तों। लिबरल माइंड का कहने का मतलब है कि जो मस्तिष्क जितना उदार होगा, जितना विशाल होगा, जितना ब्लैंक होगा, ब्लैंक का मतलब यह नहीं कि मूर्खतापूर्ण होगा, ब्लैंक का मतलब है कि उसमें किसी भी चीज को स्वीकार करने की ताकत होगी, उस मस्तिष्क में उतनी अधिक इनोवेशन की संभावनाएं होंगी। ये बहुत सिंपल सी बात है मित्रों। एक जमीन है, अगर जमीन में पहले से ही कोई दूसरी फसल है या घास पतवार ही है कह लीजिए आप, तो वहां दूसरी नई फसल कैसे हो सकती है? नई फसल हो इसके लिए जरूरी है कि वो जमीन खाली हो, और आपको यह भी मालूम है कि अगर जमीन 2-3 साल तक खाली रहती है तो उसकी जो उपजाऊपना जो होता है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो मित्रों, ये जो मस्तिष्क का खालीपन है, आप उसको अज्ञानता के खालीपन से जोड़कर मत देखिए कि वो कुछ नहीं जानता है, ऐसा नहीं है। मस्तिष्क के खालीपन का मतलब अज्ञानता नहीं है, कुछ भी न जानना नहीं है। सच ये है कि जब हम मस्तिष्क के खालीपन की बात करते हैं तब उसका अर्थ होता है अज्ञानता का बोध। हम जानते हैं, शायद दूसरों से बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि हमसे भी ज्यादा जानने वाले लोग हैं, और अभी तो जानने को इतना ज्यादा पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा बचा हुआ है कि इस जन्म में मैं रात दिन अपना अपने जीवन का एक एक क्षण भी उसे दे दूं तो शायद मेरे लिए, शायद क्या, सच यह है कि मेरे लिए उसे जानना संभव नहीं हो सकेगा। तो फिर आइंस्टीन की बात कि मैं समुद्र के किनारे घूमते हुए उसमें रेत का एक एक कण फेंकने की कोशिश, एक एक कण फेंक रहा हूं, और यह मूर्खतापूर्ण काम है कि समुद्र इससे भर जाएगा। हमारे पास ज्ञान की वही सीमाएं हैं। तो मित्रों, ये जो हमारे अंदर का जो बोध होता है, अज्ञानता का बोध होता है, ये हमें और भी ज्यादा जानने की ओर आकर्षित करता है। और जो संकीर्ण मस्तिष्क होगा, सीधी सी बात, एक तो देखिए सीधी सी बात है कि जो भी चीज संकीर्ण होगी, जो भी चीज सक्रिय होगी, आप ये बताइए कि उसमें स्पेस अधिक होगा या कम होगा। जो भी चीज जितनी सक्रिय होगी उसमें स्पेस उतना कम होगा, और जो चीज जितनी लिबरल होगी, जितनी फ्लेक्सिबल होगी, उसका मूवमेंट उतना ज्यादा होगा और वहां स्पेस उतनी ज्यादा होगी, और जहां जितनी ज्यादा स्पेस चीजों को मिलेगी वहां चीजें उतनी ज्यादा मात्रा में आ सकेंगी। ये बहुत ही एक सिंपल सा सिद्धांत है, या कह लीजिए कि स्पष्ट व्यवहार है, इसके लिए कोई बहुत बड़े साइंस की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहां मैं इसके साथ ही एक जनरल स्टडीज के दृष्टि से आप कह लीजिए, या एसए की दृष्टि से कह लीजिए, या लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से ही आप कह लीजिए, मैं एक बात इतिहास की चर्चा करना चाहूंगा। वो ये फ्रेंड्स कि अगर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो मैं वेदों के कालों के काल के बाद की बात कर रहा हूं। वैदिक जो हमारा पीरियड है, पोस्ट वैदिक हो या प्री वैदिक हो या पोस्ट वैदिक हो, मैं उसके बाद के समय की बात कर रहा हूं, और उस समय से बात कर रहा हूं जब हमारे यहां उपनिषद तैयार हो गए थे, राइट? उपनिषदों ने सबसे ज्यादा भारतीय चेतना में जो एक बात भरी वो ये है कि विज्ञान या प्रकृति के सत्य के प्रति एक तार्किक दृष्टि पैदा की, वो प्रश्न करने लगे। और देखिए, जो उपनिषद शब्द है ये बड़ा प्यारा शब्द है। उपनिषद का मतलब ये पास बैठकर, मतलब जो उपनिषद की जो बातचीत है, जो ज्ञान जो इकट्ठा हुआ है, वो ऐसा नहीं कि हम मैंने लिख दिया और इसके बाद किसी ने पढ़ लिया। उसमें तो शिष्य और गुरु दोनों आमने सामने बैठे हैं, पर अब आप सोच करके देख लीजिए कि जब आमने सामने बैठकर बात होगी तो बात कैसी होगी। जैसे मैं अभी आपसे इस ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से बातें कर रहा हूं, तो ये बातें एक तरफा हैं, आप सुन रहे हैं, सुनने के बाद आपको लगता है कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, या इसमें ये और भी होनी चाहिए, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज थी, तो आप अपने विचारों से छोटे से ईमेल के माध्यम से मुझे अवगत करा देते हैं और वो बात मेरे तक पहुंच जाती है। लेकिन अब इसका दूसरा उपनिषद वाला रूप लीजिए कि यहां अक्टूबर में क्लासेज होने वाली हैं, हम सब आमने सामने होंगे, तो वहां हर क्लास के खत्म होने से पहले 10 मिनट का समय क्वेश्चन आंसर के लिए रखा जाता है कि जो कुछ भी अब आपसे बात की गई है, जो कुछ भी आपको क्लास में बताया गया है, इस पर अगर कोई डाउट है या कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो आप पूछें। तो वहां उसका निराकरण उसी समय हो गया। तो उसी समय निराकरण कैसे हुआ? क्योंकि हम आमने सामने बैठे हैं और प्रश्न भी तभी उठेंगे जब हम आमने सामने होंगे, तब प्रश्न ज्यादा उठेंगे। और मजेदार बात यह है कि जब आपके दिमाग में प्रश्न उठेंगे तो आप समाधान भी उसका तुरंत चाहेंगे, उसको बाद के लिए नहीं टालेंगे, क्योंकि बाद में जो फिर बातचीत होगी तो उससे भी प्रश्न उठेंगे। तो मित्रों, उपनिषद की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि जब गुरु कुछ कह रहा है तो शिष्य प्रश्न खड़े कर रहा है और गुरु फिर उस प्रश्न के उत्तर दे रहा है, और इस प्रश्न और उत्तर की शैली में चीजें ज्यादा से ज्यादा लॉजिक होती चली जा रही है। लॉजिक है क्या? प्रश्न खड़े करना और फिर उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना। यहां श्रद्धा और विश्वास जैसी कोई बात नहीं है उपनिषद में कि साहब चूंकि गुरु कह रहे हैं और गुरु तो सत्य ही कहते हैं और गुरु के किसी कथ्य को मिथ्या नहीं मानना चाहिए, उस पर शक नहीं करना चाहिए। यहां उपनिषद में यह बात नहीं है, इसीलिए उपनिषद बहुत ज्यादा तार्किक हो गए, वैज्ञानिक हो गए। और वहां से जो भारतीय मेधा थी उसने जो उड़ान भरी है वो अद्भुत थी। मित्रों, जनरल स्टडीज के अंतर्गत आप सब इतिहास पढ़ेंगे, पढ़ना ही चाहिए। उसमें आप स्पेशली मार्क कीजिएगा कि हमारे यहां जो छठवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, मतलब आप मान करके चलिए कि मोटे तौर पर जैन धर्म बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई है ना, वहां से लेकर के और चौथी पांचवीं शताब्दी बाद तक का जो पीरियड था, आप ऑलमोस्ट कह लीजिए गुप्ता काल के बाद का पीरियड, हर्षवर्धन के ठीक पहले तक का पीरियड इतिहास में, ये जो हमारा समय रहा है दोस्तों, लगभग 1000 साल का इतिहास जो भारत का रहा है, अद्भुत रहा है। आप राजनीतिक चिंतक देखिए, मेडिकल साइंस में देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान में देखिए, ज्योतिष शास्त्र में देखिए, व्याकरण भाषा लिंग्विस्टिक में देखिए, साहित्य में देखिए, फिलॉसफी में देखिए, अद्भुत काल रहा है। आप बहुत चक रह जाएंगे कि क्या कारण है कि आर्यभट्ट भी इसी समय हुए, पाणिनि भी इसी समय हुए, चरक भी इसी समय हुए, सुश्रुत भी इसी समय हुए, कालिदास भी इसी, हर क्षेत्र में एक से एक प्रतिभाएं जिन्हें हम आज क्लासिकल जीनियस कहते हैं, ये सब हुए। तो उस युग में, उस पर्टिकुलर 1000 साल के पीरियड में, जो भारत की जो जमीन थी, मेधा की जो जमीन थी, जो विजडम की जो जमीन थी, वो इतनी उपजाऊ बनी, तो क्या कुछ अलग से हुआ था? नथिंग। लिबरल थॉट, लिबरल एनवायरनमेंट और लॉजिकल थिंकिंग, उसकी वजह से भारत को सही मायने में विश्व गुरु माना गया। तो दोस्तों, ये तो मैंने थोड़ी से बड़े स्तर की बात की है। हम सब स्टूडेंट हैं, देखिए मैं भी स्टूडेंट ही हूं, थोड़ा सा उम्र में बड़ा हूं आप लोगों से बस। तो मुझे ये लगता है कि हम सबको इस विचार को, इस तथ्य को, या कह लीजिए इस सिद्धांत को, इस सूत्र को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि हम में जितनी अपनी अज्ञानता का बोध होगा या ज्ञान का अबोध होगा, उतने ही ज्यादा हमारे दिमाग में स्पेस बनेंगे, और जितने ज्यादा दिमाग में स्पेस बनेगा दोस्तों, उतने ही ज्यादा हम भरकर अपने पास चीजें ला सकेंगे और फिर उसे बचाकर रख भी सकेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगी कि हम कैसे अपने ईगो से लगातार लड़ते 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 उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं, जैसे कि दशरथ मांझी ने एक चट्टान, एक पहाड़ी से लड़ते 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 उसे नेस्तनाबूद कर दिया। ये बहुत जबरदस्त अंतर संघर्ष होता है। और जकरबर्ग जैसे लोगों के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो गए, देखा, अंदर कुछ घटित हुआ और सब कुछ बदल गया, क्योंकि उनके पास वो पृष्ठभूमि थी, बाकी लोगों के पास नहीं हुई। तभी तो जकरबर्ग को वो इनोवेट कर पाए, फेसबुक वगैरह को दूसरे लोग नहीं कर पाए। तो मित्रों, कुल मिलाकर के यही जीवन का जो एक इनोवेशन का आप कह लीजिए, मुझे लगता है कि दर्शन है। इसीलिए बहुत से लोग ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, और साइंस भी मानता है कि जो इनोवेशन का सीधे सीधे संबंध स्पिरिचुअलिटी से है। स्पिरिचुअलिटी कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, स्पिरिचुअलिटी तो चेतना का एक बड़ा उच्चतम और पवित्रतम स्तर है, विशुद्धतम स्तर है कॉन्शस का, और वहां से इस तरह की आश्चर्यजनक चीजें पैदा होती हैं, आती हैं। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए बस इतना ही। अब मैं आता हूं अब नेक्स्ट स्टेज पर, और वो स्टेज है आकाशवाणी के समाचार के स्टेज। मित्रों, कल के आकाशवाणी के समाचार में दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और एक खबर तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ में आ ही गई होगी, और वो खासकर जो एस्ट्रोसेट छोड़ा गया है। ये एक तरह से भारत की विज्ञान और तकनीकी और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसके बढ़ते हुए बहुत बड़े और मजबूत कदम का प्रमाण भी है। आप लोगों ने न्यूज में सुना मित्रों, और फिर आज आपको अखबारों में भी पढ़ने को मिला होगा। दैनिक भास्कर ने इसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत एडिटोरियल भी लिखा है। मुझे लगता है कि आपको ये जो एस्ट्रोसेट है इसके बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें जान लेनी चाहिए, और अगर आप चाहें तो एक छोटा सा नोट बना सकते हैं, छोटा सा नोट, बहुत ज्यादा नहीं, विस्तार से नहीं। और आपका जो नोट होगा वो कोई बहुत टेक्निकल नहीं होगा, वो होना चाहिए बहुत ही प्रैक्टिकल, जो एक जनरल नॉलेज की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। अब जैसे क्या जनरल नॉलेज की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है, इसका शब्द ही देखिए। पहला शब्द एस्ट्रो, एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, यानी कि ये जो एस्ट्रोसेट है, सैटेलाइट है, जिसका हिंदी उच्चारण आपने, हिंदी अनुवाद आपने न्यूज में सुना, खगोल अनुसंधान उपग्रह, इसका नाम ही है खगोल अनुसंधान उपग्रह। इंग्लिश में इसे कहा गया एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रो, सैटेलाइट से सेट, उसको जोड़ करके एस्ट्रोसेट बना दिया गया। तो इसी में देखें कि आपको बहुत सी चीजें पता लग जाएंगी कि यह है क्या। तो सीधी सी बात है कि ये एक ऐसा यान है, विमान है, उपग्रह है कह लीजिए, जो अंतरिक्ष में जाकर के शोध का कार्य करेगा, अनुसंधान का काम करेगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी अनुसंधान की चीजें हैं, वो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई चीजों को बताती है एस्ट्रोलॉजी, तो ये भी वही करेगा। तो ये क्या करेगा? नो डाउट इसके जो दूसरे काम है वो तो है ही है, जैसे कम्युनिकेशन में मदद करना, वेदर के बारे में जानकारी देना, मौसम के बारे में जानकारी देना, वहां से चित्र वगैरह खींच करके भेजने पर हमें पता लग जाता है कि यहाँ काले बादल छाए हुए हैं, यहाँ ये प्रेशर है, ये सब हमें आंकड़े तो प्रोवाइड करेगा ही। लेकिन इससे भी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है कि पूरे अंतरिक्ष, पूरे ब्रह्मांड और आकाशगंगा, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, कि उनके जो रहस्य हैं, उनकी जो मिस्ट्री है, उसके बारे में वो अनुसंधान करेगा, उसकी खोज करेगा। भारत तो दोस्तों शुरू से ही इस मायने में बहुत बहुत विलक्षण रहा है कि हमारे पता नहीं ऋषि मुनियों ने कैसे, किन आंखों से देखा, भगवान जाने, कि पता लगा लिया कि ये सप्त ऋषि हैं और पृथ्वी ऐसे घूमती है और ये इसका रूप है। ईश्वर जाने वो कौन सी शक्ति थी, कौन सी क्षमता थी जिसके आधार पर उन्होंने जो परिकल्पनाएं की वो ज्यों की त्यों सही बैठी ऑलमोस्ट। तो यही काम मित्रों ये एस्ट्रो सेट करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको छोड़ने के बाद भारत विश्व का पहला ऐसा डेवलपिंग कंट्री हो गया है जिसने आप कह लीजिए अंतरिक्ष में वेधशाला स्थापित की है, अपना एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। अभी तक जिनकी वेधशालाएं काम कर रही हैं अंतरिक्ष में वो हैं अमेरिका, थोड़े से आपको ध्यान से देशों के नाम सुन लेने चाहिए, अमेरिका, रूस, है ना, आप अमेरिका रूस को तो जोड़ जोड़ करके चलिए, तो अभी कोल्ड वार खत्म हो गया, नहीं तो आप पहले देखेंगे कि अगर अमेरिका चंद्रमा पर गया है तो रूस भी चंद्रमा पर जाएगा, रूस ने ये किया है तो फिर अमेरिका ये करेगा। तो कोल्ड वार के दौरान दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस रूप में करते थे, और ये रीजन भी रहा कि रूस इन सब चीजों में काफी आगे भी रहा। तो अमेरिका और रूस तो है ही, फिर जापान, जापान एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी आगे है, आप लोगों को मालूम है, और फिर एक और ग्रुप है यूरोपीय संघ। अब आप वैसे तो देखेंगे तो यूरोपीय संघ 28 देशों का समूह है, लेकिन इसे एक देश मान लिया जाता है खासकर ऐसे मामलों में, क्योंकि वो सब इस तरह के काम मिल करके करते हैं। तो हम मान लेते हैं चार देश हो गए, अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ, और अब भारत उसका पांचवां देश बन गया है। तो मित्रों एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भारत के लिए। तो इस तरह से आप एक छोटा सा नोट तैयार कर लें। फिर एक पॉइंट ये कि इसकी जो उम्र है 5 साल है, लगभग ये 5 सालों तक काम करता रहेगा, और ये जो पृथ्वी है उससे 650 किलोमीटर ऊपर इसको स्थापित किया गया है। भारत ने अपने ही प्रक्षेपण यान से इसको स्थापित किया है, न केवल भारत ने अपने ही यान को भेजा है बल्कि अमेरिका के भी यान का प्रक्षेपण किया गया है, कनाडा का भी यान का प्रक्षेपण किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो भारत है इस क्षेत्र में धीरे 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 कितनी जबरदस्त रूप से तरक्की करता जा रहा है। और जो बहुत ज्यादा आंकड़े वगैरह होते हैं, बहुत ही ज्यादा जो टेक्निकल मामले होते हैं, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं मान लीजिए, तब फिर आपको थोड़ा सा और डिटेल में चले जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो जनरल स्टडीज में आपकी मदद करेगा, बल्कि इसलिए कि हो सकता है कि इंटरव्यू वगैरह में, चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और स्पेशली फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा आपसे और डिटेल में या उसके टेक्निकल आस्पेक्ट पर कुछ पूछ लिया जाए। दैट्स ऑल। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर थी मित्रों, वो थी खासकर हमारे जो वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट। और याद रखिए कि चाहे वो कोई छोटा सा ही प्रोग्राम क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई मंत्री या प्रधानमंत्री अगर कोई अपनी बात कहते हैं और उसमें पॉलिसी से रिलेटेड बात होती है, तो उसकी बहुत अहमियत होती है ना। उसे आप किसी राजनेता का स्टेटमेंट ना माने, है ना। वो हमारे देश के एक बहुत ही जिम्मेदार मंत्री का स्टेटमेंट होता है, मतलब वो भारत सरकार का एक तरीके से वो वक्तव्य होता है। और आपने न्यूज में सुना कि हमारे वित्त मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, जिसको हम पब्लिक सेक्टर के बैंक कहते हैं, जिसमें आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप इस तरह के जितने भी बैंक हैं, आप देखें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब के सब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है कि सरकार धीरे धीरे उसमें अपनी भागीदारी कम करेगी और भागीदारी को 52% तक ले आएगी। सुनने में सामान्य सी बात लगती है, तो क्या हो जाएगा 52% तक ले आएगी, तो उसे क्या फर्क पड़ जाएगा। यहीं पर आपको एक जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं हम, उसको ऐड करना होगा या कॉमन सेंस लगाना होगा। अगर कॉमन सेंस न भी कहें तो जो इकोनॉमिक्स की आपकी समझ है उसका इस्तेमाल करते हुए इस 52% वाले मामले को, आंकड़े को समझना होगा कि फिर इससे क्या हो जाएगा। और मुझे तो सच पूछे मित्रों, ये लगता है कि अगर हम इस टेक्निक के आधार पर थोड़ी सी अपनी तैयारी करने लगे ना, तो हमारी तैयारी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। और देखिए, जो रियल एग्जामिनेशन है वो तो सिविल सर्विस का मेन एग्जामिनेशन है, जो सही में परीक्षा है। और हम सच में इस तरह की तैयारी करके मुख्य परीक्षा के लिए अपने आप को बहुत मजबूत बना लेते हैं। दोस्तों देखिए कि 52% का क्या मतलब है। दो स्टेटमेंट उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट दिए हैं, एक तो 52% वाला और दूसरा राजनीतिक फैसलों से दूर होना। मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर देता हूं, हालांकि इससे पहले अपने पहले के कई ऑडियो में मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने इसे एलोबरेट किया है, और क्लास में तो मैं इसे बहुत डिटेल में ही बताता हूं। देखिए, 52% का मतलब क्या है कि एक जो कंपनी होती है, जो है ना, कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाता। तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वो कंपनी के प्रबंधन के बारे में, कंपनी का प्रबंधन होता है, आप कह लीजिए प्रबंधन विंग होता है, वो सारा का सारा मैनेजमेंट देखता है, पॉलिसी डिसीजंस लेता है। अब अभी तक यदि सरकार की ही पूरी तरह से कंपनी है, तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सरकार के ही लोग होंगे। तो अगर 100% की भागीदारी है, तो 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सरकारी लोग होंगे, सरकारी लोगों का अपना काम करने का तरीका होगा। लेकिन यदि उसमें से सरकार ने अपनी 48% भागीदारी बेच दी, 48% उन्होंने कहा ना कि 52% तक हम आएंगे, हम अपने हाथ में रखेंगे, मतलब 48% बेचेंगे, तो ये 48% की भागीदारी किन लोगों की होगी? ये प्राइवेट लोगों की होगी, है ना, जिसमें बैंकर्स होंगे, पूंजीपति होंगे या प्रोफेशनल लोग होंगे, जो भी है, जिनके पास भी पैसा है। तो ये जो 48% जो लोग खरीदेंगे, ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आएंगे, क्योंकि देखिए ये लोग इतनी पूंजी लगाएंगे, तो उस पूंजी की कोई गारंटी भी तो होनी चाहिए। तो ये प्रबंधन के हिस्से बन जाते हैं, जो प्राइवेट लोग हैं फिर वो प्रबंधन के हिस्से बन जाते हैं। और जब ये प्राइवेट लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, क्योंकि उनके सामने तो पूरा लाभ और हानि दिखाई देगा ना, कि अगर बैंक घाटे में जा रहा है तो उनकी पूंजी डूब गई। तो ऐसी स्थिति में जो सरकारी तंत्र, जो अपने ढंग से अनप्रोफेशनल तरीके से या लापरवाही से या गलत निर्णय लेता है या ढीला ढाला है, जो कुछ भी कह लीजिए, जिसको हम रेड टेपिज्म कहते हैं, आरोप लगता है अक्सर नौकरशाही पर, वो चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये लोग खत्म उसको करेंगे, क्योंकि इनका अपना इंटरेस्ट है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रबंधन है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही बड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, और जो डिसीजंस भी लिए जाएंगे वो फिर ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा नहीं लिए गए डिसीजन होंगे, जिनके पास सही मायने में कोई बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन जो एग्जाम पास करके और फिर अपने कैरियर के दौर में इसमें आ गए और अब निर्णय ले रहे हैं, तो वो स्थिति खत्म हो जाएगी। तो एक संतुलन बन जाएगा, एक सरकारी निर्णय और प्राइवेट निर्णय इन दोनों के बीच में संतुलन बन जाएगा, जिसे आप दूसरे लैंग्वेज में पीपीपी मॉडल कह सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कह सकते हैं। तो इससे जो बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, डेफिनेटली अब निर्णय ऐसे लिए जाएंगे, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जब कार्यप्रणाली में सुधार होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जो सरकार इतना पंप करती है पैसा, बैंकों को नुकसान हो रहा है, जैसे अभी अक्सर आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिल रहे होंगे कि बैंकों के सामने सबसे बड़ा संकट यह पैदा हो गया है कि जो उसने ऋण दिए थे वो ऋण उसको वापस मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तो बहुत से जो प्रोजेक्ट हैं, आपने कई आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि वो बेकार पड़े हुए, पूरे ही नहीं हो रहे हैं, अब उसमें पैसा फंसा पड़ा है, अर्निंग हो नहीं रही है, तो वो जो कंपनीज हैं वो बैंकों को पैसा लौटा नहीं रही है, तो बैंकों के सामने एक बड़े संकट की स्थिति पैदा हो गई है। तो इस तरीके की चीजें फिर कम होने लगेंगी, वो अपने रूल्स रेगुलेशंस बदलेंगे, अपने काम करने के तौर तरीके बदलेंगे, तो ये हमारे जो बैंक हैं वो ज्यादा एफिशिएंट बन सकेंगे, फिर कम से कम जो हमारा सरकारी पैसा जो इस तरह से खराब होता है वो नहीं हो सकेगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया था दोस्तों कि राजनीतिक फैसलों से अलग बैंकों को रखा जाएगा। देखिए राजनीतिक फैसले क्या है, अब आप इसको सीधे से इधर पॉलिटिक्स से जोड़ करके मत देखिए। राजनीतिक फैसले की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो खासकर जब मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इसके बाद जब उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, पहले तो ये सारे के सारे बैंक जो थे ये प्राइवेट लोगों के हाथ में थे, नेशनलाइज करने के बाद ये सब सरकारी बैंक बने। तो जब ये सरकारी बैंक बन गए तो मिसेस गांधी इस मतलब कह लीजिए सोशलिज्म के झुकाव में थी, मतलब समाजवादी विचारों की थी और गरीबी हटाना है और देश को आर्थिक समृद्धि दिलाना है, वो नेहरू जी की लाइन को लेकर के चलने वाली थी। तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो जब राष्ट्रीयकरण करने के बाद फिर अब उन्होंने बैंकों को कुछ जिम्मेदारी देनी शुरू की, जैसे किसानों को आप सस्ते में ऋण दीजिए, अब किसानों को आपने ऋण दे दिया, अब वो ऋण वापस नहीं आ रहा है तो उस ऋण को माफ कर दिया जाए, गरीबों को ऋण दे दीजिए, वो सारा का पैसा डूब रहा है। तो सरकार के अपने जो राजनीतिक हित होते थे उनको देखते हुए सरकार बैंकों को निर्देश देती थी और बैंकों को उन्हें फॉलो करना पड़ता था, जो और फॉलो करने का नतीजा ये होता था कि बैंकों का वो पैसा डूब जाता था और फिर बैंकों के मैनेजमेंट को सरकार देख रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग, भर्ती, कौन एमडी बनेगा, तो ये सारे के सारे जो निर्णय होते थे प्रोफेशनल नहीं होते थे, ये बेसिकली इसका जो बेस होता था, जो आधार होता था वो पॉलिटिक्स होता था और नतीजा उसका ये होता रहा कि बैंकों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली गई। तो उन्होंने वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम बैंकों को इससे भी अलग रखेंगे और स्वाभाविक है कि देखिए जब वो प्राइवेट लोग आ जाएंगे ना तो इन चीजों को बर्दाश्त करेंगे ही नहीं, इन चीजों को रोकेंगे और तभी हमारे जो बैंक हैं वो सशक्त हो सकेंगे, स्वावलंबी भी हो सकेंगे। दोस्तों ये इसमें केवल ये दो न्यूज इंपॉर्टेंट थी। एक बात अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर दोस्तों, न्यूज रेडियो न्यूज की बात खत्म हो गई। इससे पहले मैंने जब हम लोग बात कर रहे थे आयरलैंड की तो मैंने दो पर्सनालिटी का नाम लिया बताया था आपको, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और दूसरे थे थॉमस ओल्डहम। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इंडो आर्यन भाषाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था भारत में और इसीलिए उनको बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। मैंने कहा था कि मैं दूसरे के बारे में जान करके आपको बताऊंगा और मुझे खुशी है कि मैं नाम मुझे नहीं दिख रहा है इसमें, एक स्टूडेंट ने मुझे थॉमस ओल्डहम के बारे में जानकारी भेजी है, मैं पहले तो उन्हें धन्यवाद दे दूं। जो थॉमस ओल्डहम हैं इनके बारे में बस थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये सन 1850 में हमारे यहाँ जो भूगर्भिक सर्वेक्षक के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ इनका, मार्च 1851 में ये इन्होंने अपना कार्यभार संभाला और ये मैं मार्च 1851 का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी दिन को फिर भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने भारत में आने के बाद हमारे जो कोल बेल्ट होते हैं उनकी मैपिंग की और दूसरे खनिजों की भी मैपिंग इन्होंने की और यहां आने के बाद उन्होंने जीवाश्म जो फॉसिल्स होते हैं उसके ऊपर काफी कुछ लेख भी लिखे। तो ये है कह लीजिए आप थॉमस ओल्डहम का छोटा सा परिचय जो आपकी जानकारी में होना चाहिए। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर में थोड़े से कल की तुलना में थोड़े से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें एक जो अच्छा जो आर्टिकल है दोस्तों, एडिटोरियल कमेंट है, वो है टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टार्टअप इंडिया को लेकर कि भारत में भी धीरे धीरे इंटरप्रेन्योरशिप बहुत डेवलप हो रही है ना। सिलिकॉन वैली तो इंटरप्रेन्योरशिप का एक तरह से सेंटर ही है, और अभी हमारे जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो उसी को बेस बना करके ये एडिटोरियल कमेंट किया गया। बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल कमेंट है और मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ें। उन्होंने वही बात कही है जो मैंने अभी इनोवेशन के आज के लाइफ मैनेजमेंट में शुरुआत में कही थी कि जो सिलिकॉन वैली है जो आज इतना ज्यादा सेंटर बना हुआ है, उसका कारण था कि उसकी उदार नीतियां कि हर जगह से वो टैलेंटेड को इन्वाइट कर रहा था और वहां जो माहौल प्रोवाइड किया गया तो बहुत ही वहां फ्रीडम थी, तो वहां इतनी सारी नई नई चीजें हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। इसमें इन्होंने भारत के 3D की जो बात की जाती है और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4D भी जोड़ा है, उसको लेकर के एनालाइज किया है। और इन्होंने जो 3D दिया है वो तो आपको मालूम है, डेमोग्राफिक डिविडेंट, फर्स्ट डी डेमोग्राफिक डिविडेंट मतलब हमारी जनसंख्या की जो विशेषता है। आपको मालूम है कि हमारे अभी भी लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 35 साल से कम उम्र की हैं, जिसीलिए कहा जाता है यंग इंडिया। दूसरा डी का मतलब है डेमोक्रेसी, हम लोकतांत्रिक देश हैं, चाइना की तरह नहीं है। तीसरा ये कि डिमांड, हमारे पास बहुत बड़ा बाजार है। और फिर फोर्थ डी उन्होंने कहा डी रेगुलेशन का मतलब है कि हमारे यहां जो बहुत ज्यादा कानून के सिकंजे हो गए हैं, अब हम उन्हें धीरे धीरे कम करके एक फ्री एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इन्होंने इसको वेलकम किया है और सच में अगर ऐसा किया जा सका तो डेफिनेटली भारत एक बार फिर से विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है, क्योंकि वो ऐसा रहा भी है। और इसमें मेंशन किया कि 18th सेंचुरी में भारत पूरा का पूरा जो वर्ल्ड जीडीपी होता था उसका 22.6% कंट्रीब्यूट करता था, तो वो दिन फिर से वापस आ सकते हैं। मित्रों, इसके अतिरिक्त और भी दूसरे कई आर्टिकल्स हैं, सभी ने मैंने अपने ढंग से अंडरलाइन कर दिया है, लेकिन आपको सिर्फ अंडरलाइन वाले अंश नहीं पढ़ने हैं, प्लीज आर्टिकल्स को आप पूरा पढ़िएगा ताकि तभी आपको वो चीजें सही तरीके से समझ में आ पाएंगी। दोस्तों अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, ईमेल का चरण है। तो सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूं ब्रिजेश कुमार गुप्ता का, जो जिला सिवान बिहार से आ रहे हैं अभी अक्टूबर की क्लास में। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, जो भी स्टूडेंट उनके एरिया से आ रहे हो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। इनका मोबाइल नंबर है ब्रिजेश गुप्ता का 9801549124। मित्रों अब मेरा धन्यवाद उन सबके प्रति है, आभार भी उन सबके प्रति है जिन्होंने मेल लिखे हैं, और इनमें से कुछ के नाम हैं संदीप कुमार पुणे से, शिखा सिंह, नीलम वाघेला, रवि कुमार श्रीवास रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, राज नारायण, कुसुम सुथार मुंबई से, और रणजीत कुमार रांची से। और दोस्तों इसी के साथ ही अब मैं इजाजत चाहूंगा, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।